देवम्। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। तो सिक्स क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, वैष्णव के या भक्तों के 26 गुण जो होते हैं, ये बहुत फेमस गुण है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इन गुणों को इम्फेसाइज करते हुए सनातन गोस्वामी से जब उनकी वार्तालाप होती है उस समय चैतन्य महाप्रभु इन गुणों को बताते हैं। तो ओरिजिनली ये जो गुण है ये श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से बातचीत करते हैं तब इसको बताते हैं कि, और इसको बताने के पीछे उनका उद्देश्य भी होता है कि किस प्रकार से ग्लोरीफाई करना चाहिए, वैष्णव के गुणों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसके बारे में बताते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले जस्ट एक बार हम इन गुणों का क्वांटिफाई करेंगे कि क्या क्या ये गुण हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इस कोर्स में या इन क्लासेस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेजरली किस तरह से हम इसका फ्लो करेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी सेशन है तो किस तरह से हम कितना समय इसमें लगेगा और एक एक क्वालिटी को किस प्रकार से डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मेनली। और सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या 26 गुण जो चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे वो क्या होते हैं। एक श्लोक है ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक संख्या 78 से 80 तक महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। कृपालु अकृतद्रोह सत्य सारसम निर्दोष बदान्य मृदु शुचि अकिंचन सर्वोपकार शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिह स्थिर विजित सद्गुण मित भुक अप्रमत्ता मानद अमानि गंभीर करुणा मैत्र कबीर दक्ष मौनि। इस प्रकार से 26 गुण है। कौन कौन से ये गुण है? सबसे पहला गुण है कृपालु। कृपालु बहुत सिंपल मीनिंग है, हम सभी जानते हैं। एक भक्त मर्सीफुल दयालु या कृपालु होता है, मतलब सभी पे कृपा करना चाहता है। भक्त का ये नेचर होता है कि वो कृपा करते समय ये नहीं देखता है कि कौन व्यक्ति किस पे किया जाए किस पे नहीं किया जाए, सभी के ऊपर कृपा करता है। वो पहला गुण है कृपालु। दूसरा गुण है अकृत द्रोह। अकृत द्रोह, द्रोह का मतलब लड़ाई या किसी के साथ मनमुटाव करना। अकृत मतलब कभी भी नहीं करता, उसके द्वारा कभी नहीं किया गया। दैट मीन्स भक्त कभी भी किसी दूसरे के साथ मनमुटाव नहीं करता है या दूसरे से बैर नहीं करता है, ये उसका दूसरा गुण है कृपालु अकृत दोहो। तीसरा गुण है सत्य सार। सत्य सार मतलब उसके जीवन का जो सार, सार मतलब एसेंस, वो है सत्यता, ट्रूथफुलनेस। भक्त हमेशा सत्य बोलता है। चौथा है सम। सम मतलब सभी के लिए समान होता है। एक वैष्णव सभी के लिए समान होता है, शत्रु मित्र सभी उसके लिए समान होते हैं। उसके बाद पांचवा गुण है निर्दोष। एक वैष्णव का कोई दोष नहीं होता है, फॉल्टलेस, उसमें कोई दोष नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला गुण आता है मैग्नानिमस वदान्य। वदान्य का मतलब होता है कि कृष्ण भक्ति जो कि संसार की सबसे ऊंची गिफ्ट है वो सभी को फ्रीली प्रदान करता है, मैग्नानिमस। उसके बाद अगला गुण आता है मृदु। मृदु मतलब माइल्ड, बहुत मधुर होता है उसके विचार, उसकी बातचीत, उसकी डीलिंग्स बहुत मधुर होती है। उसके बाद आठवां गुण आता है शुचि। शुचि मतलब भक्त बहुत स्वच्छ होता है, उसके व्यवहार में बहुत स्वच्छ होता है, उसके विचारों में बहुत स्वच्छ होता है, और लोगों के साथ भी मतलब उसके पहनावा भी स्वच्छ होता है, आंतरिक बाहर पूरी तरह से स्वच्छ होता है। उसके बाद उसका अगला गुण है अकिंचन, किंचन, किंचित से जो है वो किंचित से आता है, किंचित मतलब थोड़ा, और अकिंचन, अकिंचन का मतलब होता है थोड़ा भी नहीं। तो एक भक्त के पास कोई भी भौतिक पोजेशन नहीं होता है, कोई भी भौतिक पोजेशन से वो अटैच नहीं होता है, ये भी बोल सकते हैं। अकिंचन का मतलब ही इज विदाउट मटेरियल पोजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है सर्व उपकारक। भक्त जो है वो सभी के प्रति उपकार करता है, संसार का सबसे बड़ा उपकार करता है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो लोगों को भगवान से उनके संबंध को याद दिलाने का जो कार्य करते हैं वो संसार के लिए सबसे बड़ा उपकारक कार्य होता है। उसके बाद अगला गुण होता है शांत। भक्त हमेशा शांत रहते हैं, कभी भी उनका मन एजिटेटेड नहीं होता है, मन में कभी भी द्वंद नहीं होते। उसके बाद अगला गुण है कृष्ण शरण। भक्त जो है वो भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, और अभी जस्ट हम इनको नाम बता रहे हैं क्वालिटीज को, इन हर हर क्वालिटीज के ऊपर एक एक चैप्टर है, एक्चुअली 26 क्वालिटीज के 26 चैप्टर्स हैं इसमें, इस पुस्तक में। तो हर क्वालिटी को अलग से हम डिस्क्राइब करेंगे, अभी जस्ट हम उसका नाम नाम डिस्कस कर रहे हैं। कृष्ण शरण के बाद आता है अकाम। उस भक्त की कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होती है, भौतिक भोग की कोई इच्छा उसके अंदर नहीं पाई जाती है, उसकी सारी इच्छाएं आध्यात्मिक होती है। उसके बाद अगला है अनीह। अनीह मतलब अगर उसके पास भौतिक वस्तुएं हैं भी तो भौतिक वस्तुओं से आसक्त नहीं होता है। अनीह का मतलब होता है भौतिक पोजेशंस के प्रति आकृष्ट नहीं होता है। उसके बाद होता है स्थिर। भक्त का मनोभाव हमेशा स्थिर होता है, और भक्त का विचार, उसका एम, उसकी इच्छाएं हमेशा स्थिर होती हैं, कभी भी डगमगाती नहीं है। उसके बाद अगला गुण है विजित सद्गुण। भक्त ने 6 प्रकार के जो बुरे गुण हैं उन गुणों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, उसको बोला जाता है विजित सद्गुण। उसके बाद मित भुक। भक्त का एक और लक्षण होता है कि उसको जितनी आवश्यकता है उतना खाता है, ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। भक्त जो होते हैं वो जरूरत से ज्यादा नहीं खाते हैं, जितनी उनको आवश्यकता होती है उतना भोजन करते हैं। उसके बाद अगला गुण होता है अप्रमत्त। अप्रमत्त मतलब कभी भी वो लूज टॉक नहीं करते हैं, लूज टॉक या लूज व्यवहार नहीं करते हैं। अप्रमत्त का टेक्निकल मीनिंग होता है प्रमत्त मतलब पागल, आ मतलब नहीं। पागल का नेचर क्या होता है, पागल किसी भी तरीके की बात करता है, बिना बेसर पैर की बात करता है, व्यवहार भी उसका अजीब होता है। तो भक्त का व्यवहार उस प्रकार से नहीं होता है, भक्त अप्रमत्त होता है। उसके बाद आता है अगला मानद। सभी के लिए सम्मान प्रदान करना, हमेशा सभी लोगों के प्रति भक्त सम्मान पूर्वक व्यवहार रखता है। उसके बाद आता है अमानी। अपने खुद के लिए सम्मान की इच्छा नहीं करता है। वास्तविकता में मानद अमानी ये दो 26 गुणों में भी बहुत महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं, उनके बीच में ये गुण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद अगला आता है गंभीर। भक्त कभी हमेशा ऐसे जोकिंग मैनर या लूज बातें करना या फिर लूज प्रकार से व्यवहार करना वो नहीं करता है, गंभीर रहता है अपने जीवन में। उसके बाद अगला गुण है करुणा। सभी के प्रति दयालु होता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में ऐसे कई क्षण आए जब श्रील प्रभुपाद संसार के लोगों को देख के बहुत दुखी होते थे, बोलते थे कि ये लोग किस प्रकार से दुखी जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनको कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ पता नहीं। इसके बाद अगला गुण आता है मैत्र। भक्त सभी का मित्र होता है, संसार में उसको कोई शत्रु नहीं होता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज का एक नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब उनके शत्रु का जन्म नहीं हुआ है, ऐसा इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का डिस्क्रिप्शन आता है। तो भक्त सभी का मित्र होता है, सभी के प्रति मित्रता होती है उसके उसके मन में। उसके बाद अगला गुण आता है भक्त जो है वो पोएट, कवि होते हैं। कवि का मतलब होता है कि ये गुण एक्चुअली सामान्यतः बहुत सारे एडवांस भक्तों में ये गुण पाया भी जाता है। पोयम बनाते हैं वो, भगवान का ग्लोरिफिकेशन पोएट्री के द्वारा करते हैं, कविताओं के द्वारा करते हैं। उसके बाद अगला गुण है दक्ष। दक्ष मतलब एक्सपर्ट, जो भी कार्य करते हैं उसमें एक्सपर्ट होते हैं। श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जब कुक करते थे तो वो परफेक्ट होता था, श्रील प्रभुपाद जब वॉश करते थे तो वो भी परफेक्ट होता था, जब श्रील प्रभुपाद डांटते थे तो भी परफेक्ट होता था। सिर पे उपाय भोजन करते थे तो परफेक्ट होता था। कुछ दाना एक बार किसी जगह पे फेंके थे तो एक भक्त उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। वो बताते हैं कि सिर पे उपाय हर चीज में दक्ष है। तो भक्त का नेचर होता है कि एक्सपर्ट इन ऑल एक्टिविटीज। उसके बाद लास्ट क्वालिटी 26वीं क्वालिटी है, भक्त साइलेंट होते हैं। साइलेंट का मतलब कि अगर जरूरत नहीं है तो ज्यादा बात नहीं करते हैं। ऐसी आदत नहीं होती कि कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, ऐसी आदत भक्तों की नहीं होती है। अगर वो बोलते हैं तो काम की बात करते हैं, अप्रोप्रिएट बात करते हैं, वो भगवान का गुणगान करते हैं, संसार की निरर्थक बातें या भौतिक बातों को नहीं करते। तो ये 26 गुण हैं जो कि ओरिजिनली चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को डिस्क्राइब किए थे। सुखदेव गोस्वामी ये सारे गुण एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, कि ऐसा नहीं है कि किसी भक्त को इस एक एक गुण को अलग से सेपरेट सेपरेटली डेवलप करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हमें जाके दक्ष के ऊपर कोई अलग से सेमिनार सुनना होगा या विजित सतगुण के ऊपर अलग सेमिनार सुनना होगा, विनम्रता के ऊपर अलग से सेमिनार सुनना होगा। तो सेपरेटली इन गुणों को, इन अलग अलग गुणों को प्राप्त करने के लिए भक्त को बहुत स्ट्रगल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में आता है केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेय निहारम इह भास्कर। ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उनके मन से पाप की इच्छाएं और पाप करने की प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार से खत्म होती हैं कि फिर कभी उनकी वापस आने की संभावना नहीं होती है, पूरी तरह से अपरूट हो जाते हैं। और जिस प्रकार से सूरज की किरणों से धुंध या कोहरा अपने आप खत्म हो जाता है, उसी तरह से शुद्ध भक्ति के प्रताप से ये सारे गुण डेवलप हो जाते हैं। पर अगर इस श्लोक की बात माने तो फिर ये प्रश्न आता है कि फिर अलग अलग इन गुणों के बारे में डिस्क्रिप्शन करने की क्या जरूरत है। अगर हम बोलते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति को एग्जीक्यूट करने से सारे अच्छे गुण मिल जाते हैं, भगवद गीता में भी भगवान ने 13वें अध्याय में बताया है 20-20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के 20 तत्व तो भगवान बताते हैं। और श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है पूरी तरह से तो बाकी 19 तत्व तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। ज्ञान के जो 20 तत्व तो आते हैं उसमें से एक तत्व तो होता है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। अगर वो कोई व्यक्ति स्वीकार करता है तो ऑटोमेटिकली बाकी गुण उसको डेवलप हो सकते हैं। और प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में डिस्क्राइब करते हैं कि भक्ति की 9 प्रोसेस हैं। 9 प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से भक्ति की 9 प्रोसेस जो कि नाम जप से प्रारंभ होते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से भक्ति की 9 प्रोसेस होती हैं। अगर हम इन 9 प्रोसेस को करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सारे दिव्य गुणों को प्राप्त करते हैं। इसलिए भक्तों के अंदर देवताओं के गुण भी पाए जाते हैं और इंद्रियों को नियंत्रित करना जो कि बहुत कठिन है इस संसार में। इंद्रियों को नियंत्रित, पूरी दुनिया इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है परंतु प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को अननेसेसरी नियंत्रित नहीं करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं जिससे ऑटोमेटिकली इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। तब फिर चैतन्य महाप्रभु, तब ये प्रश्न नेक्स्ट आता है कि चैतन्य महाप्रभु फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करते ही क्यों है 26 गुणों को। अगर ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है 26 गुणों को जानना, केवल भक्ति करने से सब कुछ आ जाएगा, तो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में इन गुणों के बारे में लिखा क्यों? ये नेक्स्ट प्रश्न आता है। उसका एक कारण है कि चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से वैष्णवों का चरित्र कितना ऊंचा होता है। इन 26 गुणों को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जिससे जिससे कि लोगों को पता चले कि वैष्णवों का चरित्र, उनका व्यवहार कितना अच्छा होता है, रिचनेस ऑफ द वैष्णव कल्चर, वैष्णव कैरेक्टर। और इन 26 गुणों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु वैष्णवों को ग्लोरीफाई भी करते हैं। जैसे ब्राह्मणों में 9 क्वालिटीज पाई जाती हैं, क्षत्रियों में 6 क्वालिटीज पाई जाती हैं, वैश्य में 3 क्वालिटीज पाई जाती हैं, शूद्र में 1 क्वालिटी पाई जाती है और वैष्णव में 26 क्वालिटीज पाई जाती है। तो इस प्रकार से वैष्णवों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं चैतन्य महाप्रभु। और दूसरा भी कारण है कि हम भी देख सकते हैं कि हम वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं, भक्ति का पालन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज कितनी डेवलप हो रही है। 26 गुणों को अगर हम मेडिटेट करेंगे और देखेंगे कि हमारे अंदर ये क्वालिटीज कितनी डेवलप हो रही हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारा एडवांसमेंट कितना हो रहा है। अगर अभी तक हम इन क्वालिटीज में से कोई भी क्वालिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम भक्ति की बहुत नीची अवस्था में। श्रील प्रभुपाद इसमें लिखते भी हैं कि आध्यात्मिक प्रोग्रेस के समय व्यक्ति को टेस्ट करना चाहिए अपने आप को कि वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, और उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है वो इन 26 गुणों को देख सकते हैं कि ये 26 गुण हमारे अंदर किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, और जितना हम उन गुणों को डेवलप कर पा रहे हैं उतना हम समझ सकते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रहा है। और जब हम सुनते हैं कि महान महान भक्त इस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि वैष्णव कल्चर है और इस कल्चर को और आसानी से हम समझ सकते हैं जब वैष्णवों को हम इन गुणों को प्रदर्शित करते हुए देखते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो इस पूरे संसार में फैलने के लिए, इसलिए ये 26 गुण पूरे संसार के लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड के समान है। कोई भी व्यक्ति आइडियल कब बन सकता है, जब वो इन वैष्णविज्म के 26 गुणों को प्राप्त कर सकता है, और ये गुण दयालु कृपालुता से प्रारंभ होते हैं, इनको हमें दिव्य स्वभाव में देखना है। तो यद्यपि ये 26 गुण भक्ति से स्वतंत्र नहीं है, परंतु तब भी भक्ति करते समय हम प्रयास कर सकते हैं कि कैसे हम इन गुणों को एग्जिबिट करें, कैसे हम अपने जीवन में इनको अपनाएं। ये पर्पज है चैतन्य महाप्रभु को जो है इन गुणों को डिस्कस करने का, क्योंकि एक भक्त बनना, श्रील प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं एक भक्त मतलब उसके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यद्यपि ये प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु अगर किसी का व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो उसके प्रचार में कोई मतलब नहीं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है, अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है, तो उसका जो प्रचार करना है उसको प्रचार करना ऑलमोस्ट यूजलेस जैसा। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि हो सकता है व्यक्ति बहुत साफ सफाई रखे, आंतरिक बाहर तरीके से बहुत साफ सफाई रखे, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति की केवल सफाई का कोई मतलब नहीं है अगर वो भगवत भक्ति या भगवत चेतना को प्राप्त नहीं करता है। तो ये सारे गुण अपने आप में दिव्य हैं, और अगर इन गुणों को हम डेवलप करने का प्रयास करते हैं भक्ति के प्रोसेस के साथ साथ, तो हम देखेंगे कि ये गुण हमें भक्ति में आगे बढ़ने में मदद भी करते हैं, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे आता है अंत्य लीला में कि रघुनाथ दास गोस्वामी का डिस्क्रिप्शन आता है। उस डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी सभी वैष्णवों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे कि उनके व्यवहार को देख के वैष्णव खुश हो जाते थे, और वो वैष्णव फिर खुश होकर रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद देते थे, और उन उन वैष्णवों के आशीर्वाद से रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में शुद्ध कृष्ण भक्ति बहुत आसानी से प्रकट हो गई, और उनके उनके अच्छे गुणों के कारण उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से बताया जाता है रघुनाथ दास गोस्वामी के कैरेक्टर के बारे में। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं भक्त का पहला गुण। पहला गुण क्या था? दयालु, दयालु या कृपालु। कृपालु इसमें श्लोक में कृपालु शब्द आता है, कृपालु का मतलब होता है मर्सीफुल। इस गुण के बारे में श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो 3rd स्कंध में भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को बताते हैं कि साधु का एक लक्षण होता है कृपालुता, साधु का एक लक्षण होता है अजात सत्व शांत साधु साधु भूषण। इस तरह से भगवान कपिल अपनी माँ को बताते हैं साधु का ये लक्षण। वो बताते हैं कि वैष्णव कृपालु होता है क्योंकि वो सभी जीवों का अच्छा चाहता है, तो और केवल मनुष्य समाज का ही नहीं, वो पशु समाज का भी अच्छा चाहता है, क्योंकि सर्वदेही नाम सभी जीवों के लिए, सर्वदेहिना मतलब जितने जितने भी आत्माओं ने शरीर धारण किया है उन सभी के लिए वैष्णव वेल विशर के जैसा होता है। जितने भी जीवों ने भौतिक शरीर धारण किया है उन सभी के लिए जो वैष्णव है वो दयालु कृपालु होता है, क्योंकि केवल ऐसा तो नहीं कि मनुष्य शरीर ने ही केवल मनुष्य लोगों ने ही केवल शरीर धारण किया है, पशुओं ने भी शरीर धारण किया है, कुत्ते बिल्ली ये भी भौतिक शरीर में है। तो अगर वैष्णव सभी के लिए समान है तो उसको सभी जीवों से प्रेम करना सीखना चाहिए। तो भगवान का भक्त सभी के प्रति कृपालु होता है, चाहे वो कुत्ते हो बिल्ली हो पेड़ हो, और सभी जीवों को इस प्रकार से व्यवहार करता है कि वो सारे जीव भौतिक एंटेंगलमेंट भौतिक दुख से बाहर निकल सके। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं उस समय उस कीर्तन की ध्वनि वृक्षों के पास, पेड़ों के पास जाती है, और उस ध्वनि को सुन के वृक्ष भी कीर्तन में भाग लेते हैं, और कीर्तन में भाग लेके उनकी भी मुक्ति होती है, वो भी मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। जो वृक्ष हैं वो वृक्ष भी जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वृक्ष मंदिर में होते हैं उन वृक्षों के फूल और फल भगवान को ऑफर किए जाते हैं, भगवान को समर्पित किए जाते हैं, तो उन वृक्षों के जब फूल और फल भगवान को ऑफर किए जाते हैं तो उससे उन वृक्षों को भी फायदा मिलता है। जैसे हमारे वृंदावन मंदिर में एक वृक्ष है जो मंदिर के कॉरिडोर में ही है, मंदिर के बीच में वो वृक्ष है, तो वृक्ष पिछले 50 साल से श्री श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन कर रहा है, गौर निताई कृष्ण बलराम के दर्शन करते हैं, और 24 घंटे उस वृक्ष के नीचे कीर्तन चलता रहता है, तो उससे पता चलता है वो वृक्ष का अंतिम जन्म है। इसी प्रकार से मंदिर में जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों का फल, उनके फूल भगवान को समर्पित किए जाते हैं, भगवान को भोग लगाए जाते हैं, तो उससे उन सभी को फायदा मिलता है। तो जो भक्त हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं कि सभी लोग भौतिक दुख से बाहर निकले। अभी कोई सोच सकता है ठीक है चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, वो लोग कृपालु हो सकते हैं, परंतु मैं कैसे कृपालु बनूंगा, मैं तो खुद ही स्ट्रगलिंग भक्त हूँ, मैं तो खुद नया भक्त हूँ, तो मैं कैसे कृपालु बन सकता हूँ, इस प्रकार से कोई व्यक्ति सोच सकता है। इसका आंसर है कि कोई महान कृपालु भक्त की सेवा करने से और उनके लिए कार्य करने से हम भी उनके आदेश के आधार पर हम भी कृपालु बन सकते हैं दूसरे लोगों की, यद्यपि हमारे मन में कोई कृपा है नहीं क्योंकि हम अभी उतने एडवांस भी नहीं है, भक्ति में नई अवस्था में है, परंतु चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद को उनकी सेवा करके और उनके संस्था में सेवा करके हम भी कृपालुता को प्राप्त कर सकते हैं, और कृपालुता कृपालु इस गुण को हम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसलिए जब हम किसी महान भक्त की सेवा करते हैं तो हम उसकी कृपा के भी पार्ट बनते हैं और उस कृपा को भी हम शेयर कर सकते हैं, और हम जब कृष्ण भक्ति को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रभुपाद के आदेश के द्वारा, गुरु के आदेश के द्वारा, तो हम भी उनके इस कार्य को करते हुए हम भी कृपालु बन जाते हैं। हालांकि वो कृपालुता हमारे हृदय के अंदर से नहीं आती, हम उसको ड्यूटी के जैसा करते हैं, कई बार हम उसको बर्डन के जैसा करते हैं, परंतु किसी भी तरह से हम करते हैं, पर अगर वो लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान होता है, अगर लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं तो वो हमारे हिस्से में भी वो कृपालुता आती है। जैसे कोई व्यक्ति, अगर कोई युद्ध चल रहा है और कोई व्यक्ति, कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो जो घायल सैनिक हैं उनको इलाज कर रहे हैं, उनको पट्टी, मरहम पट्टी लगा रहे हैं, बैंडेज लगा रहे हैं, तो जो लोग ऐसे में घायल लोगों को बैंडेज लगाने का काम कर रहे हैं वो भी कृपालु कहलाते हैं, भले ही वो युद्ध में नहीं पार्ट कर रहे हैं परंतु वो भी उस युद्ध के हिस्से हैं। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद यद्यपि कृपालु हैं, हमारे अंदर उतनी कृपालुता है नहीं, तब भी श्रील प्रभुपाद के मिशन में कार्य करते करते हम भी उस कृपालुता को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्त हमेशा कृपालु होता है क्योंकि उसने वास्तविक ये पता कर लिया है कि कृपा कृपा क्या कहलाती है और किस प्रकार से कृपालु होना चाहिए। यहाँ पे जब हम कृपा की बात कर रहे हैं तो ये कृपा इस तरह से नहीं है कि हमें किसी को भोजन खिलाना है या हमें किसी को घर दिलवाना है, ये कृपा दिव्य स्वभाव में है। कृपा का मतलब होता है हम देखते हैं कि हर आत्मा भगवान का अंश है और इस संसार में भगवान को भूलने के कारण वो संसार में फंसे हुए हैं कितने कितने जन्मों से, अनादि अनादि कर्म फले परि भवार न उजले, इस प्रकार से एक सॉन्ग में आता है कि अनादि काल से कर्म के फल के कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है। तो वास्तविक कृपालुता कहलाती है कि ऐसे लोगों को याद दिलाना कि भगवान कृष्ण उनके पिता हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करके वो इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये कृपालुता का एक लक्षण है जो हम इस सेक्शन में कृपालुता की बात कर रहे हैं। केवल बॉडीली आवश्यकताओं, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना दयालुता या कृपालुता नहीं कहलाती, वास्तविकता में उनका आत्मा का भगवान से कनेक्शन जो है वो एटर्नल रिलेशनशिप को जागृत करना कृपालुता कहलाती है। इसलिए प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन कि प्रभुपाद आप इस समाज की सोशल सर्विस क्यों नहीं करते, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, लोगों को, गरीबों को सब कुछ देना, ये सब आप क्यों नहीं करते? सुशील प्रभुपाद ने बोला था ऐसा करने के लिए तो ऑलरेडी हजारों ऑर्गेनाइजेशन, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य है, उसको मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को प्रदान करूं, क्योंकि उसको प्रदान करने से लोगों को वास्तविक फायदा होगा। हम किसी को भोजन दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, परंतु कितनी देर के लिए? कुछ घंटे के लिए व्यक्ति संतुष्ट होगा, परंतु अगर उसको हमने ये रास्ता बता दिया, आध्यात्मिक रास्ता, तो इस संसार में, इस जन्म के बाद वो कभी भी इस संसार में नहीं आएगा, अपने घर वापस चला जाएगा। तो वो कृपालुता कहलाती है। और किसी किसी व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं करना उसके लिए हिंसा के जैसा कहलाता है। तो शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, भागवत धर्म के जो सिद्धांत हैं, वो अपने आप में कृपालुता के सिद्धांत हैं। और जो भी इन सिद्धांतों को पालन करता है, वो अपने आप, उसका जो व्यवहार है वो दयालु हो जाता है। तो अगर हम केवल शास्त्रों के सिद्धांतों को पालन करेंगे और उन सिद्धांतों की आज्ञाकारिता के कारण ही हम सारे जीवों का भला कर सकते हैं। शास्त्रों के सिद्धांतों को पालन करने से हम जीवों को नहीं मारेंगे और सारे जीवों को कोशिश करेंगे कैसे उनको भगवत प्रसाद दिया जाए, भगवान की कृपा दी जाए, और सारे मनुष्यों को प्रयास करेंगे कि कैसे उनको कृष्ण भक्ति में लगाया जाए। तो ये जो कृपा का जो गुण है, ये जब भी हम डिस्कस करते हैं, जैसे कृपा के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल आता है चैतन्य चरितामृत में, भगवान नित्यानंद प्रभु का ये उदाहरण आता है कि भगवान नित्यानंद प्रभु, इवन चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु उनको बोला जाता है, क्योंकि अगर उनको कोई मारता भी है तब भी वो कृष्ण प्रेम देते हैं। जब वो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि आप जाके घर घर में प्रचार करिए, घर घर में मेरे बारे में बताइए, तो वो जाते थे और नवद्वीप के जो बहुत नीचे लोग भी हैं, किसी भी प्रकार के लोग हैं, वो जाके उनके पैरों को पकड़ लेते थे। हम सोच सकते हैं नित्यानंद प्रभु जो है वो भगवान बलराम है, स्वयं भगवान कृष्ण के फर्स्ट इनकार्नेशन, फर्स्ट एक्सपेंशन है, परंतु वो संसार के जीवों के पैर पकड़ पकड़ के क्या बोलते थे कि कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण की पूजा करो, भजन करो, और कृष्ण की शिक्षा दूसरों को बताओ, कृष्ण की शिक्षा स्वयं प्राप्त करो और दूसरों को बताओ। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु इतने ज्यादा कृपालु थे, और ऐसा करते करते कई बार लोग उन पे अटैक भी कर देते थे जो उनको पसंद नहीं करते थे, तब भी वो मार खाने के बाद ही लोगों को प्रेम देते थे। इस प्रकार से उनकी करुणा की बात आती है। तो जहाँ जब हम इस गुण का बात कर रहे हैं, तो ये गुण वैष्णवों के लिए एक्सक्लूसिव कहलाते हैं, और चूंकि वैष्णव में ये गुण पाए जाते हैं, भगवान कृष्ण वैष्णवों को ये गुण प्रदान करते हैं, तो भगवान कृष्ण के अंदर ये गुण और ज्यादा प्रचुरता में पाए जाते हैं। भगवान के हर अवतार में हम देखते हैं करुणा का ये स्वभाव होता है। जैसे भगवान रामचंद्र ने जब दंडकारण्य में ऋषियों का, जब वो एक कुछ ऋषियों के झोपड़ियों में गए थे, तो उन्होंने वहां पे एक चीज देखी थी, एक ऐसा कोना था जहाँ पे हड्डियां डली हुई थी, हड्डियों का ढेर बना हुआ था। तो उस ढेर को देख के भगवान राम की आंखों से आंसू आ गए थे। उन्होंने उन्होंने वहीं पे शपथ की थी कि मैं इस संसार से सारे राक्षसों का विनाश कर दूंगा, और शपथ लेने लेते लेते भी उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये लोग इतने बड़े साधु हैं, संसार के वेलफेयर वर्क, संसार के भले के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं, परंतु राक्षस लोग उनको संसार का भला भी नहीं करने दे रहे। इस प्रकार से ये भगवान श्री रामचंद्र ने कृपा सो की थी, भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये वैष्णवों के गुण जो है भगवान से आते हैं। कृष्णा इज द रूट ऑफ एवरीथिंग, भगवान कृष्ण सभी की जड़ है, और कृष्ण सभी के लिए सब कुछ है, और भक्त भी ये जानते हैं। हर वस्तु भगवान के नियंत्रण में है, वो भगवान की शक्तियों में आती है। भगवान की शक्तियों में से एक शक्ति होती है भौतिक शक्ति। जैसे कि ये संसार जो है भगवान की भौतिक शक्ति का एक हिस्सा है, जैसे कि जेल होता है, और दूसरी उसकी शक्ति, भगवान की शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। तो हम भगवान की दिव्य शक्ति में आते हैं, और हम इसलिए बना बनाए भगवान ने, वास्तविकता में हम भगवान की आध्यात्मिक संसार में उनके साथ में रहने के लिए। इसीलिए जब हम पूरी तरह से वैष्णव धर्म को पालन करते हैं, तब तो हम अपने आप को रियलाइज कर सकते हैं कि हम आत्मा हैं, और इस प्रकार से अगर हम जीवन जीते हैं तो हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। तो जब हम आगे भी इन सारी एक एक क्वालिटीज का डिस्कशन करेंगे, तो हम उनके आध्यात्मिक गुणों का डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे भौतिक भौतिक दया, भौतिक कृपा से ज्यादा कंसर्न नहीं, या कोई नास्तिक व्यक्ति है वो बहुत विनम्र है उससे भी ज्यादा कंसर्न नहीं, या कोई व्यक्ति बहुत सत्य बोलता है परंतु कृष्ण को नहीं मानता है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमने पहले एक श्लोक देखा कि संसार के ये गुणों में से अगर कृष्ण को हटा दिया जाए तो इन गुणों का अपने आप में कोई महत्व नहीं। ये गुण हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे गुण कृष्ण को पसंद है, भगवान कृष्ण चाहते हैं कि उनके भक्तों में इस प्रकार से गुण आए। तो भगवान कृष्ण के संबंध में जब हम इन गुणों को डिस्कस करते हैं तब हम इन गुणों को वास्तविक तरीके से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से दयालुता या कृपालुता ये पहला गुण है भक्तों का, वैष्णवों का। आपको अगर कोई प्रश्न है आप लोगों को तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ और भी अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। रघु रमन टू, कोई क्वेश्चन है आपको? आप हमेशा अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। हरे कृष्णा रघु रमन टू। या
प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, आज का लेक्चर एकदम क्लियर है प्रभु। हाँ
आपका स्वास्थ्य ठीक है? पैर ठीक हो गया अभी?
ठीक है प्रभु जी, पहले से अच्छा है प्रभु जी। प्रभु
भगवान आपकी हमेशा सुरक्षा कर रहे हैं।
जी, आप लोग की दुआ के, आप लोग जस्ट प्रार्थना कर रहे हो उसकी वजह से हो रहा है प्रभु।
हमारी प्रार्थना से, हाँ ठीक है, भगवान दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं तब तो भगवान सुनते हैं उनसे, तो अपने लिए भले ही नहीं सुनते। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके अगली क्वालिटी डिस्कस करना है आप लोग जिस तरह से बताइए, क्योंकि अगली क्वालिटी में आधा घंटा और लगेगा। नेक्स्ट क्वालिटी जो है वो है अकृत द्रोह। द्रोह मतलब डिस्प्यूट, अकृत मतलब नहीं, तो भक्त किसी के साथ भी डिस्प्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट वीक हम कर सकते हैं उस क्वालिटी को। हाफ एन आवर क्लास आई थिंक सफिशियंट है सभी के लिए ना, क्या बोलते हैं? मेजोरिटी डेमोक्रेसी का जमाना है, मेजोरिटी डिवोटीज जो बोलेंगे वो कर सकते हैं।
प्रो जी, एक क्वालिटी और देख सकते हैं आज, मेरे को लग रहा है।
अच्छा बाकी लोग क्या बोलना चाहते हैं?
हाँ कर सकते हैं प्रभु जी।
ओके ठीक है, तो नेक्स्ट गुण जो है, नेक्स्ट गुण कहलाता है अकृत द्रोह। अकृत जैसे मैंने पहले बताया, कृत मतलब करना, अकृत मतलब नहीं किया, और द्रोह मतलब, द्रोह को समझते हैं विद्रोह के जैसा, मतलब अनसबमिसिव, दूसरे के साथ वैर भावना रखना या दूसरे के साथ लड़ाई करना, ये लक्षण भक्त में नहीं पाए जाते। इंग्लिश में उसको लिखा है नॉट डिफाइंट। भक्त किसी को मना नहीं करता है, किसी से लड़ाई नहीं करता। तो ये पुस्तक एक्चुअली में श्री 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 सत्सुदास गोस्वामी महाराज ने लिखी है। वो अपना एक डिस्कशन बता रहे हैं, वो बताते हैं कि जब मैं श्रील प्रभुपाद से नहीं मिला था, श्रील प्रभुपाद से मिलने के पहले मैं सोचता था कि विनम्रता जो है वो बहुत लो क्वालिटी है, विनम्रता कोई अच्छा गुण नहीं है, और विनम्रता मेंटल चीज है। अगर कोई व्यक्ति विनम्र, सबसे पहले तो कोई व्यक्ति विनम्र बन नहीं सकता, और अगर कोई व्यक्ति विनम्र बनेगा तो उसको विनम्रता पे भी घमंड हो जाएगा, तो फिर ऐसी विनम्रता का क्या मतलब? ये बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार हम बोलते हैं कि हमें हम्बल बनना चाहिए, परंतु हम्बल बनने के बाद भी हम हम्बल बनने के लिए घमंड हो जाता है, हमें यही घमंड हो जाता है कि देखो हम कितने हम्बल हैं, हम कितने विनम्र बन गए। कभी अगर हम मंदिर में सफाई कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं या टॉयलेट की सफाई कर देते हैं, तो फिर हमें लगता है कि देखो मैं कितना विनम्र हूँ कि मैंने टॉयलेट की सफाई की। इससे समझना होगा माइंड कितना ज्यादा चीट करता है। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में लिखते हैं 13 चैप्टर में, वहां पे लिखते हैं कि व्यक्ति को वन शुड नॉट बी एंग्जियस टू हैव द सेटिस्फेक्शन ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, दूसरे लोगों से सम्मान पाने की संतुष्टि की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि जब मैं श्रील प्रभुपाद से पहले मिला था, तो उनसे मिलने के पहले मैं सोचता था कि विनम्र कोई व्यक्ति बनेगा तो विनम्र बनना वास्तविकता में पॉसिबल ही नहीं, ऐसा वो सोचते थे। वो सोचते थे क्योंकि अगर कोई विनम्र बनने का प्रयास करेगा तो उसको घमंड हो जाएगा कि वो विनम्र है। तो ये बता रहे हैं कि ये ह्यूमिलिटी जो है मेरे लिए कोई रियलिटी जैसी चीज नहीं लगती थी। मैंने पढ़ा था शास्त्रों में, किताबों में, परंतु मुझे लगता था ये सब बोलने की बात। परंतु जब मैंने श्रील प्रभुपाद के अंदर विनम्रता को देखा और पुराने वैष्णव आचार्यों के अंदर जब मैंने विनम्रता को देखा तब मुझे पता चला कि विनम्रता वास्तविकता में क्या कहलाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद यद्यपि इतने महान आचार्य थे, जगत गुरु के समान थे, परंतु प्रभुपाद से एक बार जब पूछा गया था कि आर यू द गुरु ऑफ एलन बिन्सवर्थ, तो प्रभुपाद से ऐसा पूछा गया कि आप एलन बिन्सवर के गुरु हैं क्या, तो प्रभुपाद ने बोला आई एम नॉट गुरु ऑफ एनीवन, आई एम द सर्वेंट ऑफ एवरीवन। और ऐसा बोल के प्रभुपाद ने सिर झुका लिया। दैट मीन्स वो प्रभुपाद की वास्तविक मानसिकता थी, वास्तविक चेतना थी कि वो अपने आप को हमेशा सभी के सेवक के समान समझते थे। और हर प्रामाणिक वैष्णव के अंदर ये गुण तो पाया जाता है कि वो अपने आप को हमेशा सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट समझते हैं, सेवक सेवकों के सेवक समझते हैं। तो ये लिख रहे हैं कि जब मैंने प्रभुपाद और पुराने आचार्य हमारे वैष्णव आचार्यों की विनम्रता को देखा तब मुझे पता चला कि विनम्रता क्या कहलाती है। जैसे शरणागति पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर विनम्रता को इतने अच्छे से बताते हैं जो कि भक्तों को समझने के लिए बहुत आसान है, बहुत मददगार है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में आपको पता है दो और बंगाल के फेमस पोएट थे जिनका नाम बहुत फेमस था, नवीन चंद्र चट्टोपाध्याय और नहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नवीन चंद्र सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब ऑलमोस्ट एक ही समय के हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को सभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिंदी के बहुत फेमस कवि हैं, राष्ट्र कवि बोला जाता था। इसी तरह से नवीन चंद्र सेन बंगाल के बहुत बड़े कवि, रविंद्रनाथ टैगोर को तो साहित्य सम्राट बोला जाता है। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर का कोई ज्यादा नाम नहीं हुआ, यद्यपि वो एक ही साथ के थे, मजिस्ट्रेट थे ये भी, और वो लोग भी मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे थे, परंतु वो लोग उस समय बहुत फेमस हुए और भक्ति विनोद ठाकुर उस समय फेमस नहीं हुए। और क्यों फेमस होंगे? भक्ति विनोद ठाकुर विनम्रता के सॉन्ग लिखते थे और इस प्रकार से सॉन्ग लिखते थे, अमर जीवन सदा पापे रतो नाहि को पुण्य लेस, ऐसे सॉन्ग लिखेगा तो कोई कैसे फेमस होगा। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कोई याद नहीं करता है, रविंद्रनाथ टैगोर को भी लोग इतना नहीं जानते हैं, परंतु भक्ति विनोद ठाकुर की लोकप्रियता पूरे संसार में बढ़ती जा रही है। पूरे संसार में हम देखें तो हर समय 24 घंटे भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग कहीं ना कहीं गाए जाते रहते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने संध्या आरती, गौर आरती भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है, जय जय गौरा चांदे, तो इस्कॉन के इतने सारे मंदिर हैं पूरी दुनिया में, कहीं ना कहीं शाम के साथ बजते रहते हैं। भोग आरती भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है जो भगवान को राजभोग के समय गाई जाती है। और भक्ति विनोद ठाकुर की एक सबसे फेमस आरती है जो तो भक्त लोग खुश हो जाते हैं उस आरती को सुन के, दिन में कम से कम 3 बार तो वो मंत्र हम गाते हैं, शरीर विद्या जल जड़े इंद्रिय ताहे कर, जैसे ही वो मंत्र आता है तो हमारे कान एकदम खुश हो जाते हैं। जैसे श्री श्रीमद भक्ति सागर स्वामी महाराज बताते थे कि जब भागवतम क्लास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय चालू होता है तो लोगों को नींद आ जाती है, और जैसे ही महाप्रसादे गोविंदे चालू होता है तो लोग जाग जाते हैं, इतना ज्यादा प्रसाद का आकर्षण होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जो सॉन्ग है पूरी दुनिया में लोग गा रहे हैं हर समय, इतने ज्यादा भक्ति विनोद ठाकुर फेमस है, पूरी दुनिया में कोई ना कोई भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग लगातार गाया जाता रहता है। और भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग विनम्रता को बहुत डिटेल में बताते हैं। जैसे ये सॉन्ग जो हमने डिस्कस किया अभी, हमारे जीवन सदा पापे रतो, उस सॉन्ग को आप अगर सुनेंगे पूरा सॉन्ग विनम्रता पे आधारित है। वो लिखते हैं कि मेरा जीवन हमेशा पाप से भरा हुआ है, ना ही को पुण्य लेस, कोई भी पुण्य मेरे पास नहीं है, परे रे उद्वेग दिया छी जे का तो दिया छी जीवे रे क्लेश, हमेशा मैंने दूसरों को परेशान करने में ही सुख प्राप्त किया है। और परे रे उद्वेग, दूसरों को मैंने उत्तेजित किया है, पूरा सॉन्ग इस प्रकार से आता है। वो सॉन्ग कभी हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो इस प्रकार के सॉन्ग जब आचार्य लोग लिखते हैं तो उनके विनम्रता का लक्षण हमें पता चलता है, उससे हमें भी पता चल सकता है कि हम कितने पानी में हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का सॉन्ग, जब मैं इस प्रकार से सॉन्ग सुनता है भक्ति विनोद ठाकुर का ये सॉन्ग, तो हमें लगता है कि एक्चुअली हम लोग विनम्रता के नाम पे नाटक कर रहे हैं, ड्रामा जैसा कर रहे हैं, वास्तविक विनम्रता तो कुछ है नहीं। हमारे लिए अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न तारीफ करता है तो हम बाहर से बोलते हैं कि प्रभु जी आप तो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो सब गुरु और कृष्ण का है, परंतु अंदर ही अंदर हम खुश हो जाते हैं कि देखो मैं इतना महान था इसलिए इनको दिखाई दे गया कि मैं इतना महान हूँ, अच्छा हुआ ये भक्त ने बहुत अच्छा गुण बताया। तो हमारा विनम्रता ज्यादातर ड्रामा के जैसा होता है, और जब हम भक्ति विनोद ठाकुर की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके पोएम्स को पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि विनम्रता का वास्तविक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर तो भगवान के नित्य सिद्ध अवतार हैं, परंतु वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति की नहीं, पूरा जीवन उन्होंने वेस्ट कर दिया। भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग में लिखते भी हैं, बार्धक्य एक होना भक्ति विनोद कांदीय कातर रति ना भजिया तेनु, मुझे पूरा याद नहीं, उसका मीनिंग आता है कि अभी तो मेरी बुढ़ापा आ गया है और अभी तक मैंने आपका शरण नहीं लिया, आपकी कभी अच्छे से भक्ति नहीं की, इसलिए अभी मैं बहुत दुखी हूँ कि अगर कितना अच्छा होता अगर मैं आपकी अच्छे से भक्ति कर लेता। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर उस सॉन्ग में लिखते हैं। और उस सॉन्ग का इंग्लिश मीनिंग इसमें दिया हुआ भी है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि वो कृष्ण भक्ति में अपने जीवन के लास्ट में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले अच्छे से भक्ति कर सकते थे परंतु कभी उन्होंने भक्ति को सीरियसली लिया नहीं, भौतिक जीवन ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी उनके पास कोई और सहारा नहीं, तो वो समय के द्वारा पूरी तरह से टूट चुके हैं, अभी वो विनम्रता के साथ भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी मृत्यु आने वाली है। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर उस सॉन्ग में लिखते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर साथ साथ ये दुख भी बताते हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण को पहले सरेंडर नहीं किया। हरि हरि विफले जन्म गवाइनो मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया। ये सॉन्ग एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर का है और इसी थीम में है ये, कि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि उन्होंने भगवान कृष्ण को पहले सरेंडर क्यों नहीं किया। तो ये जो प्रेयर्स हैं बहुत डीप प्रेयर्स हैं भक्ति विनोद ठाकुर की प्रेयर्स, और सामान्यतः भौतिकवादी लोग इन प्रेयर्स को समझ ही नहीं पाते क्योंकि भौतिकतावादी तो इन प्रेयर्स को कमजोर कमजोर प्रेयर समझते हैं। तो जो विनम्र भक्त, जो भक्ति विनोद ठाकुर ने बताए हैं, विनम्र भक्त का मतलब होता है ऐसा भक्त जिसको अपनी गलतियों के बारे में पता है। ये विनम्रता का एक बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। विनम्रता का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं हमें उसके बारे में पता है, उसको विनम्रता बोला जा सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस संसार में पता नहीं कर पाते हैं कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि वो बिजी रहते हैं दूसरे के अंदर कमियां ढूंढने में। उनको लगता है कि मैं हमेशा परफेक्ट हूँ और बाकी जो लोग हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो तो उनके अंदर कमियां हैं जबकि मेरे अंदर कोई कमी नहीं। परंतु जब व्यक्ति विनम्र बनता है तब वो समझ पाता है कि नहीं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, मेरे अंदर ज्यादा कमियां हैं। जितना वो एडवांस होता है उतना उसको पता चलता है कि मेरे अंदर दूसरे लोगों से ज्यादा कमियां हैं। तो इसको विनम्रता बोला जाता है, अवेयर ऑफ वंस ओन शॉर्ट कमिंग, अपनी गलतियों को पूरी तरह से समझना। भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली जब विनम्रता को बताते हैं तो भगवान कृष्ण के संबंध में इसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं और उनके खुद के एग्जाम्पल से वो इतना ऊंचा स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि वो बताते हैं कि अगर भगवान कृष्ण मुझे नहीं बचाएंगे तो मेरे लिए कोई आशा नहीं। और वो बताते हैं कि भगवान आप अपने शुद्ध भक्त को मेरे पास भेजिए जिससे कि वो भक्त आके मुझे डिलीवर करेंगे। ये उनको आशा है कि भगवान कृष्ण ने बहुत सारे पतित जीवों को बचाया है, इसलिए वो एक और पतित जीव को बचा सकते हैं। भगवान का नाम ही पतित पावन है, तो अगर पतित पावन पतित का उद्धार नहीं करेगा तो फिर पतित पावन नाम का क्या मतलब है। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर को ये आशा है कि भगवान पतित पावन है और मैं पतित हूँ, तो ये बहुत अच्छा कनेक्शन है कि ऑलरेडी उनका बिजनेस ही पतितों का उद्धार करना और मैं अगर पतित हूँ तो भगवान मुझे बचा लेंगे। इसलिए शरणागति की जो पुस्तक है वो हमें सिखाती है कि विनम्रता कोई सुपरफिशियल चीज नहीं है, विनम्रता बहुत डीप वस्तु है और नेचुरल है आत्मा के लिए और शुद्ध भक्त के लिए। ये नेचुरल हमारे जैसे बद्ध जीव जो हैं उनके लिए विनम्रता बहुत फोर्सफुल होती है क्योंकि हमें बहुत कठिन होता है अपनी गलतियों को देखना। इसलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारी गलतियों को बताता है तो हम उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते। नेचुरल ये सबके अंदर फीचर होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी गलतियों को बताना चालू करे तो हम उससे दूर रहना चालू कर देते हैं। ये इसी कारण से होता है क्योंकि हमें पसंद नहीं कि हम अपनी गलतियों को देख सकें। यद्यपि गलती होती है हमारे अंदर परंतु हम उसको छुपाने का प्रयास करते हैं और अपनी अच्छी चीजों को हम पूरी दुनिया भर में बताने का प्रयास करते हैं। भौतिकतावादी लोग जो हैं वो तो बहुत प्रोमिनेंटली इस चीज को देखते हैं, उनको उनको उनकी गलतियां नहीं दिखाई देती है, उनको केवल सामने वाले की गलती दिखाई देती है और उनकी महानता दिखाई देती है। तो जो विनम्र भक्त हैं वो अपनी गलतियों को देख के भगवान से उसके लिए माफी मांगते हैं और भक्ति में लगते हैं। भगवत गीता में श्री प्रभुपाद लिखते हैं विनम्रता का मीनिंग, और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी विनम्रता का मीनिंग लिखते हैं कि व्यक्ति को भगवान के नाम का जप विनम्र स्वभाव में करना चाहिए, अपने आप को पतित समझते हुए वन शुड थिंक हिमसेल्फ लोअर देन द स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, अपने आप को पेड़ से भी ज्यादा विनम्र रह के और कोई भी मिथ्या अभिमान घमंड नहीं होना चाहिए, सभी को सम्मान देने के लिए तैयार होना चाहिए, केवल ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति भगवान का नाम का जप कर सकता है। दैट मीन्स अगर हमें भगवान का नाम जप करने में समस्या होती है, हम भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे, तो हमें समझना चाहिए कि हम विनम्रता के इन सिद्धांतों में से किसी सिद्धांत का पालन अच्छे से नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर हम सिद्धांतों का पालन करेंगे तो भगवत नाम का जप हम बहुत अच्छे से जप कर सकते हैं। तो विनम्रता अपने आप में बहुत ग्लोरियस, बहुत उच्च क्वालिटी है, और कोई दिव्य अवस्था में जो व्यक्ति है उसके अंदर ये गुण बहुत प्रोमिनेंटली पाया जाता है। एक जगह पे आता है कि ह्यूमिलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, इट इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। विनम्रता वास्तविकता में भक्ति का हिस्सा नहीं होता है, भक्ति के अंदर भक्ति का मेन कंपोनेंट विनम्रता कहलाता है। तो प्रभु जस्ट ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं रघु रमन को। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर विनम्र है तो आध्यात्मिक प्रोग्रेस बहुत तेजी से करता है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है उतना जल्दी भगवान उसको आध्यात्मिक प्रोग्रेस कराते हैं। विनम्रता के कारण ही सन्यासी एक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाता है, केवल बैग भिक्षा के लिए नहीं जाता है, कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए सन्यासी दूसरों के घर जाता है। और कई उसको कठिनाइयां भी होती हैं, प्रचार करने में भी कठिनाइयां होती हैं, परंतु सन्यासी सबको सहन करता है और विनम्रता से प्रचार करते हुए जाता है। तो भगवान कृष्ण के चरणों को कोई व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता जब तक वो विनम्र नहीं। भगवान के सामने विनम्रता बहुत नेचुरल है। किस प्रकार से विनम्रता प्राप्त कर सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन आता है अकबर बीरबल की स्टोरी में। एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों को बोला, उन्होंने एक चौक या कलम लेके एक कागज पे एक लाइन खींची और अपने मंत्रियों को बोला कि आपके लिए ये टास्क है कि आप इस लाइन को छोटा करके दिखाइए। तो एक मंत्री लेके आए, डस्टर लेके आके उस लाइन को साफ करना चालू करने वाले थे। तो अकबर ने बोला नहीं, उस लाइन को टच किए बिना आपको उस लाइन को छोटा करना है। तो किसी को समझ में नहीं आया कैसे इस लाइन को छोटा करें। तो बीरबल को जब बुलाया गया तो बीरबल ने क्या किया, एक चौक वही जो कलम जो थी उस कलम को लेके उस लाइन के बगल में एक बड़ी लाइन खींच दी और फिर बोला देखो ये लाइन छोटी हो गई। तो उसका मीनिंग क्या निकलता है कि जब हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं तो अपने आप को विनम्र बनाने का एक तरीका है भगवान कृष्ण को समीप से जाके देखना। भगवान कृष्ण के बारे में हम जितना सुनते हैं उतना पता चलता है कि एक्चुअली हम हीरो नहीं है, भगवान कृष्ण हीरो, भगवान कृष्ण कितने महान। तो जब हम भगवान कृष्ण की महानता को देखते हैं तो उनकी महानता के सामने हम अपने अपनी अपनी निचली अवस्था को भी देख सकते हैं, अपनी निम्न अवस्था को भी देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के प्रति ऑटोमेटिकली हम विनम्रता को प्राप्त करते हैं। तो जितना हम कृष्ण भक्ति में आगे जाते हैं, जितना हम कृष्ण के बारे में जानते हैं, कृष्ण के भक्तों के बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं। तब हम ये भी रियलाइज करते हैं कि हमारे अंदर ये सब गुण नहीं है, तब हम विनम्र बन जाते हैं और विनम्रता से कार्य कर सकते हैं। तो जब कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बताते हैं कि मैं तो इतना पापी हूं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम ले लेगा तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ लिखा है वो ऐसा बोलते हैं कि मैं इतना पापी हूँ कि केवल मेरा नाम याद करने से लोगों के सारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बोलने के लिए बोल रहे हैं कि लोग जब पढ़ेंगे इस किताब को तो मेरी तारीफ करेंगे, नहीं, वो अंदर से ऐसा सोचते थे कि मैं इतना पापी हूँ कि मेरा नाम लेने से लोगों का पुण्य खत्म हो जाएगा। ऐसी विनम्रता बहुत उच्च अवस्था है, ये वो कोई चीप वस्तु नहीं है। कोई व्यक्ति केवल अपना साइन करते समय अगर लिख दे कि हम्बली योर्स, मैं आपके सामने विनम्र हूँ, केवल बोलने से ये विनम्रता नहीं आती है और इस विनम्रता को कॉपी भी नहीं किया जा सकता है। धीरे धीरे भक्ति करते करते ये डेवलप होती है। जब कोई व्यक्ति सिंसियरली भक्त बनना चाहता है और जब वो अपनी कठिनाइयों को, अपने अंदर कमियों को देखता है, तब उन कमियों को देख के उसको पता चलता है कि मुझे अभी कोई घमंड नहीं करना चाहिए, मुझे इन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और पुराने आचार्यों को रास्ते को फॉलो करते करते वो देखता है कैसे चैतन्य महाप्रभु ने विनम्रता प्राप्त की। चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के सामने पूरी तरह से विनम्र और बोलते थे कि मैं अपने गुरु के सामने मूर्ख हूँ, अपने आप को मूर्ख बताते थे। और जब कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से देखता है, कोई भक्त, सिंसियर भक्त जब देखता है, तो वो सोचेगा कि चैतन्य महाप्रभु तो कितने, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है और मैं कितना गिरा हुआ हूँ। इस प्रकार से वो भक्त अपने आप विनम्र हो जाएगा। तो यस, आपको कोई प्रश्न पूछना था रघु रमन को? अभी प्रश्न पूछ सकते हैं।
हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू वेरी
यस
मच
प्रभु।
प्रभु जी। एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रश्न ये था कि प्रभु जी, जैसे इतने सारे क्वालिटीज हमको मालूम है कि ये हमारे अंदर होने चाहिए, ये
हाँ
सब ज्ञात होने के बावजूद भी कई परिस्थिति ऐसी होती है कि हम उसको जानने के बावजूद भी उसको अप्लाई नहीं कर पाते कई जगह पे, या
जैसे
शायद उस वक्त हमें याद नहीं रहता है, या फिर शायद वो जानने के बाद भी हम किसी परिस्थिति से हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हमने हमेशा मनोभाव क्या रखना चाहिए कि ये क्वालिटीज हमें याद रहे हमारे स्वभाव के अंदर, कि हम लोग इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके आ सकें।
ये चार, ये 26 क्वालिटी जो है ओरिजिनली ये चार क्वालिटीज के अंदर आ जाती है, जो हम शिक्षाष्टक में तीसरे श्लोक में देखते हैं। उन चार क्वालिटीज के अंदर अगर 26 क्वालिटी हम याद नहीं रख पा रहे हैं, तो वो चार क्वालिटीज में से ये 26 क्वालिटीज एक्सपेंड होती है वास्तविकता में। तो वो चार क्वालिटीज को याद करने से ऑटोमेट ये सारी क्वालिटीज अपने आप आ जाती है उसके अंदर। अभी हम याद क्यों नहीं रख पाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कुछ कुछ कारण है। एक तो हमारा है हृदय दौर्बल्यता। हृदय दौर्बल्यता पाप कर्मों के बैकग्राउंड के कारण आती है। जो हमारे हमारे स्टॉक में इतना सारा पाप कर्म है कि जैसे ही हम कुछ पाप देखते हैं तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और उस समय हम भूल जाते हैं कि हमें वैष्णव के जैसा व्यवहार भी करना है। तो एक तो वो कारण है हृदय दौर्बल्यता। दूसरा कारण बताया जाता है आध्यात्मिक जीवन में सीरियसनेस को नहीं लेना, या हमारा मोटिव उतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति किस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं। ये दो मेजर कारण बताते हैं। और एक तीसरा कारण आता है इग्नोरेंस, आध्यात्मिक सत्य के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होना। तो इस कारण से हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। परंतु जब अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जब भी हमें याद आता है, तब हम ये तो सोच सकते हैं कि देखो मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं समय पे इन चीजों को उपयोग नहीं कर पाता। एटलीस्ट उतना सोचने से हमारे अंदर विनम्रता आएगी, और वो विनम्रता के कारण अगली बार हम उस क्वालिटी को एग्जिबिट कर सकते हैं। तो अगर 26 क्वालिटी हमें पूरी याद रहती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इन चार क्वालिटीज के ऊपर कार्य करने से भी 26 क्वालिटीज के ऊपर कार्य हो सकता है। ठीक है प्रभु।
ओके प्रो जी, मेरा एक सेकंड क्वेश्चन है। जैसे
हाँ
आपने बताया था कि हमारा अगर चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर
हाँ
चैंटिंग हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आपने वो एक अपराध बताया, मतलब वो अपराध होने की वजह से नहीं होता है। तो कई
हाँ
बार ऐसा होता है कि हम लोग चैंटिंग करने की कोशिश करते हैं, पर हमारा मन लगता नहीं है उस जगह पे, बहुत बार ऐसा होता है। तो क्या
हाँ
ये उसी के कारण होता है कि हम लोग उस मन नहीं लगा पाते उस जगह पे?
हाँ वनो एक एक कारण वो हो सकता है। हमें देखना चाहिए हमने पिछले दिन या पिछले रिसेंट टाइम में हमने किसी वैष्णव के साथ कुछ ऐसा व्यवहार तो नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है वो वैष्णव हमें नहीं बताया, परंतु भगवान कृष्ण समझ जाते हैं परमात्मा के रूप में। तो भगवान कृष्ण उतना हमारा चैंटिंग में से और भक्ति की क्रियाओं में से रस कम कर देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो एक कारण हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो ही कारण हमेशा होगा, परंतु एक कारण वो हो सकता है, उसके लिए सावधान रहना चाहिए।
तो फिर ऐसे स्टेज में अगर जहां हम नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका क्या उपाय है?
नहीं कर पा रहे मतलब क्या नहीं कर पा रहे? हाँ
जिस कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस समय पे चैंटिंग के ऊपर, तो हमें
हाँ
क्या करना चाहिए?
उस समय तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट जो हमारा असाइंड ड्यूटी है, जो हमारा असाइंड वर्क है, 16 माला जप करना, वो तो हमें करना ही है। भले ड्यूटीफुली करें चाहे ब्यूटीफुली करें, वो तो करना है। परंतु उसके बाद हम सोच सकते हैं कि उसको कैसे हमें कैसे एरेडिकेट करना चाहिए, क्या कारण होता है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल आपको याद है ना? रूप गोस्वामी जब भगवान कृष्ण की लीला देख रहे थे, तो एक एक ब्राह्मण आए थे जो थोड़े हैंडीकैप टाइप के थे। तो रूप गोस्वामी ने लीला देखते देखते मुस्कुराए थे, परंतु ब्राह्मण बुरा मान गए कि शायद मुझे देख के वो मेरे मेरे कुरूपता के कारण मेरे ऊपर वो इस तरह से बोल रहे हैं, और वो नाराज होकर चले गए थे। उसी समय रूप गोस्वामी को लीला दिखनी बंद हो गई थी। तो उनको लगा कि मैंने क्या किया इस तरह से। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा, तो सनातन गोस्वामी ने बताया कि कोई ना कोई वैष्णव बुरा मान गए। तो सभी वैष्णव को भोजन के लिए बुलाया, और वो ब्राह्मण नहीं आए, वो वैष्णव नहीं आए। तो फिर रूप गोस्वामी जाके उन वैष्णव से माफी मांगी, उसके बाद उनको फिर से लीला का दर्शन होने लगा। तो वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारी साधना में, भले ही हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं परंतु डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो उस समय तो हमें कैसे भी करके कंप्लीट करना है माला भगवान से प्रार्थना करके, परंतु फिर उसके पीछे कारण ढूंढना चाहिए कि कहीं कोई वैष्णव के लिए अपराध तो नहीं है या कोई भक्ति की विरोधी कार्य तो नहीं हुआ है, ऐसा कार्य जिससे भक्ति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वो हमें रिसर्च करना चाहिए। ओके
ओके फाइन प्रभु जी, थैंक यू प्रभु।
और कोई क्वेश्चन
प्रभु जी? जैसे हमें पता हो कि जैसे कोई डिवोटी थे जो हमसे पहले मतलब कुछ हो गया था, हमसे गलती हो गई थी, तो उन्होंने माइंड में रखा हुआ है पर उनसे बात नहीं होती, वो बहुत दूर रहते हैं, तो उनसे कैसे क्षमा मांगनी चाहिए और इस अपराध से हम कैसे ऊपर आ सकते हैं?
क्षमा मांगने के पहले उनके प्रति कुछ सेवा करनी चाहिए, जैसे उन भक्त को आप कभी वृंदावन जाते हैं तो उनके लिए स्पेशली कुछ स्वीट प्रसाद लेके आ सकते हैं, अलग से उनको देने के लिए गिफ्ट ला सकते हैं। डायरेक्टली क्षमा मांगने से हो सकता नहीं मांगेंगे, परंतु जब हम सेवा करते हैं और खुद अपने आप को उनके सामने झुकाते हैं तो व्यक्ति खुश हो जाता है। एक चीज मैंने देखा है कि अगर हमारी गलती नहीं भी है और अगर गलती मान जाते हैं तो व्यक्ति से हमारा व्यवहार बदल जाता है। पर्सनली मैंने भी देखा कि अगर कभी कोई जाके माफी मांग लो, भले मेरी गलती नहीं है, केवल माफी मांगने से वो भक्त खुद बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु आपकी गलती तो नहीं थी, मैंने इस तरह से किया था, तो अपने आप रिलेशनशिप बन जाता है। तो एक तो सेवा करके भक्त के हृदय को प्रसन्न किया जा सकता है, उसको कोई गिफ्ट देके या उसको कोई भी तरीके की सेवा करके उसको प्रसन्न किया जा सकता है, और आगे बढ़ के खुद अपनी तरफ से वो चालू करने का प्रयास करना चाहिए संबंध को सुधारने का। जब भक्तों के साथ हमारी नहीं बनती है या किसी से भी हमारी नहीं बनती है कई बार, तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि मैं तो अपनी तरफ से उसके पास जाऊंगा ही नहीं कभी, उसको जब जरूरत होगी तभी मेरे पास आएगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तो ईगो अभी क्रश हो गया है, ईगो क्रश हो गया है, अभी मैं नहीं जाऊंगा। परंतु ये व्यवहार भक्ति में अच्छा नहीं है, क्योंकि वैष्णव संबंध में अच्छा नहीं है ये व्यवहार। हमें जो अपने आप को झुका के एक बार उसके पास जाना चाहिए, एटलीस्ट एक बार प्रयास करना चाहिए कि प्रभु ठीक है जो भी हुआ, हो सकता मुझसे मिस्टेक हुई हो तो माफ कर दीजिए। इतना बोलने से हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बदल जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, परंतु इतना बोलने में बहुत साहस की जरूरत है, इतना आसान नहीं है। बिना गलती के जाके उससे माफी मांगना इतना आसान नहीं है, पर वो हम किस लिए करते हैं? जिससे कि हमारा उस वैष्णव के साथ जिंदगी भर जो संबंध है वो खराब नहीं रहे, क्योंकि वैष्णव का संबंध हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। हमारी कोई चीज में गलती थी कि नहीं थी वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसके पीछे एक स्टोरी है। एक बार क्या हुआ मायापुर में, बहुत पहले की बात है, मायापुर में कुछ पुलिस को किसी भक्त के बारे में कुछ कंप्लेंट कर दी थी कुछ लोगों ने, बाहर के लोगों ने, और उस भक्त की मिस्टेक नहीं थी, परंतु पुलिस उस भक्त को लेके थाने में लेके गई, और पता नहीं कुछ ऐसा केस था, मुझे एग्जैक्ट केस याद नहीं आ रहा, मैंने तो एक भक्त से सुना था। तो पुलिस उसको थाने में लेके गई, उस भक्त को थाने में रखा कुछ घंटे तक, और वो केस कुछ कुछ सीरियस होता जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पुलिस उसको जेल में भी डाल देगी। तो जयपता का महाराज को जब पता चला कि वो ऐसा ऐसा केस है, किसी ने फंसाया है भक्त को, और जयपता का महाराज जाते हैं पुलिस थाने में, और अमेजिंगली महाराज जाते ही साथ जो पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे रहता है उसके चरणों में गिर जाते हैं, उसके पैर को पकड़ के उसके चरण में गिर जाते हैं। तो वो जब भक्त देखता है, वो पुलिस वाला जब देखता है कि ये सन्यासी मेरा पैर क्यों छू रहे हैं, तो एक उछल के खड़ा हो जाता है और वो फिर महाराज को प्रणाम करता है। उसके बाद महाराज बोलते हैं कि ठीक है, इसने जो भी किया है, मान लो जो भी कुछ हुआ है उसको भूल जाइए, कृपा करके हमारे जो भी आप बताइए कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो केवल महाराज के झुकने के कारण, या यद्यपि ना तो महाराज की कोई गलती थी ना उस भक्त की कोई गलती थी, परंतु महाराज ने विनम्रता के कारण सन्यासी होते हुए एक अभक्त जो है पुलिस वाला उसके जाके पैर छू लिए, और उसके कारण वो पुलिस वाला इतना ज्यादा खुश तो नहीं पर इतना ज्यादा लज्जित उसको फील हुआ कि मुझे इसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था। उसने तुरंत महाराज के साथ उसको भेज दिया वापस, उस भक्त को, और केस भी बंद कर दिया। तो खुद आगे बढ़ के झुकना बहुत अच्छा है संबंध को बचाए रखने के लिए, क्योंकि वैष्णव संबंध हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सही थे या गलत थे वो कम महत्वपूर्ण है, मान लो हम गलत भी थे और हमारा संबंध वैष्णव के साथ अच्छा हो गया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि ये बोलना कि हम सही थे वो गलत था, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं।
प्रभु जी तो जैसे विनम्रता होनी चाहिए, पर वहाँ पे प्रभु जी कभी कभी जब हम मैनेजमेंट में जॉब करते हैं तो वहाँ विनम्रता उन मटेरियल लोगों से नहीं दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि कुछ काम करवाना होता है प्रभु जी, उन लोगों को कुछ असाइन करना होता है, तो बुरा तो लगता है जब उनको हम कुछ हार्श वर्ड बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, मन में फीलिंग तो आता है ऐसा, पर प्रभु जी क्या करे, फिर वो फिर लेकिन ऐसा करते ना तो वो फिर हमारी हैबिट से जा नहीं पाती, वो चीज जो होती है ना विनम्रता फिर आ नहीं पाती है, तो उसका क्या सोल्यूशन कर सकते हैं प्रभु जी, थोड़ा बताइए ना इसके बारे में थोड़ा।
मतलब मटेरियलिस्टिक लोगों से डील करते करते फिर विनम्रता आ नहीं पाती हमारी।
यस प्रभु जी, मतलब वो फिर वो ऐसा हो ही सकता है कि जब हम फिर कमियां देखने की हमारी आदत पड़ी जाती है प्रभु जी, ऐसा हो जाता है कि हमें कमियां दिखने ही लगती हैं फिर।
भगवद गीता दूसरे अध्याय में 49 श्लोक में आता है, योग कर्मसु कौशलम। योग का मतलब ही है कि कैसे हम एक्टिविटीज को ज्यादा कुशलता से कर सके। तो ये स्ट्रॉन्ग टेस्ट है जो भी बाहर के लोगों से डील कर रहे हैं। प्रभुपा जी एक जगह पे बताते हैं कि घर में हमें एकदम काऊ गाय के समान रहनी चाहिए, घर के बाहर हम अप्रोप्रिएटली डील कर सकते हैं। कई बार जब हम विनम्र होते हैं तो लोग हमें एक्सप्लॉइट करने का प्रयास भी करते हैं, उनको लगता है कि ये तो ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो वैसे विनम्रता की आवश्यकता नहीं है हमें कि लोग हमें एक्सप्लॉइट करें, उस समय हमें सजग रहना चाहिए। और सजग के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइट भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जिस प्रकार मैं अपना एग्जाम्पल बता सकता हूँ, क्योंकि मैं जब 3 साल जॉब किया उस समय कैसे मैं ट्राई करता था, हालांकि ऐसा कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, परंतु किस तरह से मैंने डील किया मैक्सिमम, कि मेरा जो बैच था, हमारा जो टीम था, करीब 6-7 लोगों का टीम था, तो उस टीम में लोगों को पता था कि मेरा प्रेफरेंस क्या क्या है। उनको ये भी पता था कि कौन सी बात पे मैं पॉजिटिव रिएक्ट करूंगा, कौन सी बात पे मैं न्यूट्रल रहूंगा, कौन सी बात पे मैं नेगेटिव रहूंगा। तो करीब 1 साल जॉब करने के बाद लोग मेरे सामने ऐसी बात लेके नहीं आते थे, मेरे सामने वैसा व्यवहार भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको मेरा नेचर पता चल गया था। जैसे उनको पता था कि मैं ये मीट ईटिंग ये सब नहीं करता, बाहर के रेस्टोरेंट में नहीं जाता, तो वो लोग मुझे लेके जाते थे परंतु मुझे कोई चीज ऑफर नहीं करते थे। जब मैं रहता था तो रिजल्ट की बात भी नहीं करते थे, मुझसे कुछ ना कुछ पूछते थे रामायण के बारे में, गीता के बारे में। तो मैंने एक चीज देखा कि अगर हम अपना नेचर इस तरह से सेट कर लेंगे कि हम उन चीजों को नहीं पसंद करते हैं और उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि ये मेरा पर्सनल लाइफ है, इस लाइफ का ऐसा नहीं कि आप सभी को ये फॉलो करना है, परंतु मेरे पर्सनल प्रेफरेंस है। मुझसे कोई बोलता था कि तुम ये क्यों नहीं करते, तो मैं बोलता था कि मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा इस प्रकार से चॉइस है। तो अगर हमारी प्रायोरिटीज हम लोगों को क्लियरली बता सकते हैं तो फिर मुझे लगता है बहुत चीज आसान हो जाती है। जैसे मैंने 3 साल जॉब किया, मेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर भी नहीं आया, जो मैं काम बोलता था तो लोग कर लेते थे और मुझे भी इस तरह से बिहेव नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरा नेचर नहीं उस प्रकार से। तो बेटर है कि हमारा जो डिवोशनल व्यू है वो व्यू पॉइंट उनको क्लियर कर दें कि हमारे क्या क्या प्रेफरेंस है, उसके बाद लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा हमारे साथ कैसे व्यवहार करना है, तब फिर लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। पर अगर हम कभी प्रयास करते हैं कि नहीं, हम उनके सामने बताएंगे ही नहीं कि हम इस्कॉन के हैं या वैष्णव हैं, तो फिर हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, मुझे पता नहीं ये कितना हेल्पफुल है ये प्रश्न, ये उत्तर, बट इस तरह से मैं डील करता था। ओके,
आपने जैसे बोला ना कि इन दैट केस ओनली, मैंने एज अ फ्यू मतलब साथ में कोवर्कर्स ऐसे दिखे, व्हेन नो यू आर इन दिस इवॉल्व दिस दे स्पीक क्रूकेडली अबाउट दिस थिंग्स एज इफ दे डोंट लाइक इट, बट दे ऑपोजिट इन अ रॉन्ग वे एंड वी कैन नॉट इवन आंसर दैट रूडली ऑन दैट पाथ। उस वक्त हम लोग उनको रूडली भी आंसर नहीं दे पाते क्योंकि हमको मालूम है दूसरे लोग भी देख रहे हैं, अगर मैं इस वक्त बोलूंगा तो हो सकता है कि शायद लोग मुझे मिस इंटरप्रेट करें कि हाँ भाई ये इस पथ में जुड़े होने के बावजूद भी इतना क्रोध और इतना ये है,
तो क्रोध की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ क्रोध की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु हम शांति से अपना पॉइंट रख सकते हैं। जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा कि मैं कई बार ये बताता हूँ, हमारे एक जूनियर थे, 2 साल मुझसे जूनियर थे, तो जब वो 16 माला करने लगे तो वो अपने हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में पूरा रूम का गेट खोल के माला करते थे, और जब कोई व्यक्ति अंदर आ जाता था, कोई स्टूडेंट अंदर आता था और पूछता था ए तुम ये क्या माला वाला कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो बोलते थे आओ बैठो तुम्हें सिखाता हूँ ये, तो फिर उसको पूरा सिखाते थे, कृष्ण भक्ति के बारे में बताते थे, फिर उसको भी माला कराने लगते। तो मैंने एक बार पूछा कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती, तो बोला ये तो कितनी अच्छी बात है, जब कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मुझे प्रचार का मौका मिलेगा। तो उसको गुस्सा में बताने की जरूरत नहीं है, उसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है। जैसे आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको पता है बच्चों को वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, जो अज्ञानता में है वो कुछ भी बोल सकता है, उसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि इसको नहीं पता है तो इसको हम बता सकते हैं, तो उसको आप क्लियरली मैसेज बता सकते हैं कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, एक्चुअल फिलोसफी क्या है, उसमें गुस्सा की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वो लगातार लड़ना चाहता है तो फिर शांत रह के उठ के जा सकते हैं। अगली बार अगर आप उठ के चले जाएंगे, उसको पता चलेगा कि आप नाराज हो गए हैं, तो अगली बार से मजाक नहीं करेगा।
ओके
तो या तो उसको क्लियरली हम कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, नहीं तो हम उसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि अगली बार से वो ऐसा काम हमारे साथ नहीं करे।
हाँ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो उनको मालूम है, पर इट इज बेटर टू अवॉइड देम।
हाँ, तो उसको अवॉइड करते समय आप इस प्रकार से एक्सप्रेस करिए कि आपको ये चीज पसंद नहीं है और आप नहीं चाहते कि फ्यूचर में ये डिस्कशन बार बार आए। ये चीज उसको अगर क्लियर हो जाएगा तो अगली बार से वो नहीं करेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति पर्सनल मैटर्स में डील करना नहीं चाहता, किसी दूसरे को पर्सनल मैटर्स में हर्ट करना नहीं चाहता। ठीक है, ओके। बहुत बहुत लंबा क्लास हो गया, 50-55 एक घंटे से ज्यादा हो गया। एनीवे, नेक्स्ट वीक हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जहां तक हमने आज खत्म किया उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ठीक लग रहा होगा ये क्लास। हम देखते हैं कितना कितना क्लासेस लगेगा इसको कंप्लीट करने में, 26 क्वालिटीज को। ओके, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।